हमारी आज की कहानी है बराबरी का साथ, जिसे लिखा है भावना पवार ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। बराबरी का साथ। हम हमेशा साथ रहेंगे, शादी के बाद और भी अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हुए जिंदगी बेहतरीन करेंगे। कुछ ऐसी बातें करते करते ही हम शादी के बंधन में बंधे थे। मेरी और रितेश की शादी को 2 साल हो गए। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि हम दोनों को बुरा लगे। समय चलता रहा। 1 साल बाद रितेश मुझे कहने लगे, तुम भी नौकरी करो, घर चलाओ, अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। मैं हमेशा से चाहती थी कि एक घर संभालेगा और एक पैसे ले आएगा, ताकि दोनों के बीच बराबरी रहे और दोनों एक दूसरे को वक्त दे सकें। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना और फिर हैप्पी बिटिया को का भी ध्यान रखना, उतना सब कुछ करने के बाद नौकरी का झंझट मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने फिर भी रितेश का मान रखा और शहर में नौकरी देख ली। सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाना, रितेश के लिए चाय बनाना, सारे काम से ना जाने क्यों मुझे दिक्कत होने लगी। रितेश उठते ही चाय मांगते, मैं चाय का कप देती तो वो मजे से चुस्कियाँ लेकर चाय पी लेते, और उस वक्त मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही होती। कुछ देर बाद उनका अखबार पढ़ना ख़त्म होता, तब तक मैं नाश्ता ही बना रही होती। मेरा नाश्ता पूरा भी नहीं होता कि वो कहते, शालू नाश्ता ले आओ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या ऐसी ज़िंदगी के लिए मैंने शादी की थी। रितेश नाश्ता करते तब तक मैं पूरा किचन साफ कर नहाने जाती और तब तक वो फ़ोन देख अपना मनोरंजन करते। मुझे बहुत बुरा लगता। फिर वो अपनी जॉब के लिए निकलते, मैं अपनी। इसी बीच हैप्पी बिटिया हमारे पड़ोस में रहती थी। एक दिन संडे को मैंने इनको कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तुम कपड़े सुखा देना और थोड़े कपड़े प्रेस भी कर देना। रितेश अचानक से बोले, एक दिन भी मैं अच्छी तरह से ना रहूं, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें पता है कितनी औरतें घर के साथ जॉब भी करती हैं, सब मैनेज करती हैं। मैंने भी गुस्से से कह दिया कि मुझसे नहीं होता सुबह सुबह सब कुछ मैनेज करना, वापस आकर भी सब कुछ करना, और तुम मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते। मैं शुरू से नहीं करना चाहती थी जॉब, तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ। तुम ना जाने क्यों समझ ही नहीं पा रहे, इस तंग भरी जिंदगी से मैं पूरी तरह तंग हो गई हूँ। अगले संडे रितेश के बॉस के यहाँ हमें बुलाया गया। हम दोनों वहाँ गए, देखा कि उनके बॉस तो चाय बना रहे हैं और उनकी बीवी मजे से अखबार पढ़ रही है। हम गए तो बॉस हमारे लिए पानी के गिलास लेकर आए, थोड़ी देर बाद चाय पी। बॉस को बैठने के लिए कहा तो बॉस बोले, बस थोड़े से पकौड़े भी ले आता हूँ। उनकी पत्नी ने कहा, बैठ जाओ तो भी वो बोले, नहीं तुम रोज काम करती हो और आज बस बैठी रहो, किचन में आई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। सोच रही थी कि दोनों पति पत्नी कितनी खुशी से रहते हैं। हम चाय भी पी रहे थे और रितेश ने आखिर में उनसे पूछ लिया, बॉस आप चाय पकौड़े सब बना लेते हैं? एक ही दिन तो फ्री होता है, उसमें भी आप काम करते हैं? उसके बॉस ने कहा, हम दोनों ही नौकरी करते हैं, एक दिन मैं थोड़ी सहायता कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रिश्ता बराबरी का है तो क्यों मैं सारा बोझ उसी पर ला दूं? क्यों तुम नहीं करते? रितेश ने कहा, नहीं बॉस मैं तो कुछ नहीं करता, शालू ही सारा काम करती है। ना जाने क्यों उस वक्त रितेश की आवाज़ कुछ बदल सी गई। थोड़ी देर में हम विदा हुए। घर पहुंचे तो रितेश मुझसे बोले, तुम सोफे पर बैठ के थोड़ा आराम करो, मैं आज शाम का खाना आपका शहजादा बनाएगा। यह सुन के मैं बहुत खुश हुई। शायद एक अच्छी मुलाकात किसी के जीवन में भी खुशियां भर देती है। मेरे साथ भी इस मुलाकात में वही हुआ। हम दोनों अब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कमाई और किफ़ायत, जिसे लिखा है डॉक्टर मोनिका शर्मा ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। कमाई और किफ़ायत। सुबह 5 बजे शुरू हुई दिनचर्या के पहले पड़ाव को पार करने के बाद सरिता ने एक गहरी सांस ली। स्नान ध्यान के साथ हुई दिन की सधी शुरुआत के बाद स्कूल जाने वाले 2 बच्चों और दफ्तर निकलने को हरदम हड़बड़ी मचाते 3 बड़ों के टिफिन, ससुर जी की चाय नाश्ता और घर के दूसरे छोटे मोटे काम खत्म कर उसने जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट का एक अहम भाग निपटा दिया हो। हर दिन की भागम भाग में वो 2 पल का यह ठहराव भी उसे चैन देता है। सुनो ना मम्मा, बहू जरा इधर तो आना। अरे भाभी, कहाँ कहाँ रख देती हो सामान? हर ओर गूंजते ऐसे प्रश्न, शिकायतों और आदेशों के बीच स्वयं कुछ ना खोज पाने वाले बच्चों और बड़ों को आपको कुछ पता भी रहता है? जैसा प्रश्न सरिता को मुस्कुरा कर रह जाने से अधिक कुछ करने का अवसर ही नहीं देता। आज भी बच्चों को स्कूल भेजकर वह भागती सी सासू माँ के कमरे में पहुंची। खाली पेट लेने वाली दवाई उनकी हथेली पर रखते हुए धीमे स्वर में पूछा, कैसा लग रहा है माँ, नाश्ते में क्या लोगी? बीमारी के चलते 3 महीने से बिस्तर पर पकड़े सासू माँ ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और गोली गटकते हुए मन की बात उगल दी। कल छोटी बहू आई थी मेरे पास, कहते हुए उनका स्वर संयत था पर चेहरे पर उलानों की स्याह छाया स्पष्ट दिख रही थी। जी माँ जी, कहते हुए सरिता ने उनके हाथ से खाली गिलास लिया और मन ही मन सोचा, 3 महीने में तीसरी बार आपके कमरे में आई है मेरी देवरानी। पहले 2 बार तो टिफिन तैयार करने में देरी और धोबी को समय पर उसके कपड़े प्रेस करने को नहीं दे पाने की शिकायत लेकर आई थी। इस बार क्या कारण होगा? उसकी सोच का सिरा अचानक टूटा जब सासू माँ के शब्दों में थोड़ी कठोरता उतर आई और वे बोली, 2 दिन पहले छोटू बहू के दफ्तर से देर से लौटने पर तुमने खाना गर्म करके नहीं दिया, ऊपर से अगली सुबह उसने कुछ कहा तो तुमने भी कुछ कह सुनाया। सासू माँ ने 2 बच्चों की माँ सरिता को ऐसे फटकारा जैसे किसी छोटी बच्ची को कुछ कहा जा रहा हो। अरे क्या हुआ जो कुछ कह दिया तुम्हें छोटी बहू ने? दिन भर दफ्तर में काम में जुटी रहती है, कभी अपने बॉस के आदेश, कभी जूनियर्स का निर्देश। आसान है क्या ऑफिसों की भागदौड़? फिर तुमसे छोटी भी है, शांति से कुछ सुन लोगी तो क्या चला जाएगा? पैसा कमाना आसान काम है क्या? इतना कहकर उन्होंने थकान महसूस करने के हाव भाव संग आराम करने की मुद्रा में दीवार पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बिना कुछ कहे विचलित मन को थामती सरिता अपने कमरे में आ गई। आए दिन होने वाले यह वर्ताव उसके लिए अब दुख नहीं दुर्भाव का मामला बन गया था। सासू माँ ने आज भी हमेशा की तरह मोटा वेतन कमाने वाली देवरानी का ही पक्ष लिया था। उसकी सेवा शुश्रवा और आपाधापी पहले भी अनदेखी थी, आज भी उपेक्षित रही। मन ही मन सोच रही थी कि दिन भर काम में जुटे रहने की भाग दौड़ तो उसके हिस्से भी कम नहीं। उसके लिए तो बड़ों के निर्देश ही नहीं, छोटों के आदेश व अधिकार पूर्वक दी गई हिदायतों जैसे हैं। हाँ, पैसा कमाना आसान नहीं तो पैसा बचाना भी सरल कहाँ है? छोटी कमा रही है तो वह भी तो पाई पाई बचा रही है, यह क्यों नहीं दिखता उसके अपनों को? उसकी व्यवस्था नज़र क्यों नहीं आती? अचानक भर आई आँखों को पोछते हुए वह मन ही मन बधाई, उसके काम का कोई मोल ही नहीं तो फिर क्यों सासू माँ की देखभाल के लिए आई? नर्स का 2 दिन बाद ही हिसाब कर दिया गया, क्यों बीते 2 साल से बच्चों को ट्यूशन भेजने के बजाय उसे ही एक पढ़ी लिखी माँ होने का हवाला देकर यह जिम्मा भी सौंप दिया गया? भागते दौड़ते हुए इन सभी दायित्वों को निभाते हुए कभी खाना बनाने में देर हुई तो कुक ना रहने के मामले में भी सब एकदम एकमत ही दिखे। वजह हर बार हर काम के लिए एक ही की, कुछ काम अपने ही बेहतर कर सकते हैं। क्या सचमुच इस अपनेपन के खोल में कोई आर्थिक कारण नहीं छुपा? कमाई का मोल आंकने वाले किफ़ायत के मायने नहीं समझते? मन के प्रश्नों और जीवन की परिस्थितियों के भंवर में डूबती उतरती उसकी उनीदी आंखें बंद होने को ही थी कि ससुर जी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू सुनती हो? तो वह अचानक उठ बैठी, स्वयं को संयत कर घरेलू काम काजी मोर्चे पर डटने के नए निर्देश लेने आंगन की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सेल्फ डिपेंड, जिसे लिखा है मधु रंजन ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। सेल्फ डिपेंड। जैसे ही सुबह नहाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने बालकनी में गई, तो जल चढ़ाते चढ़ाते सामने से खिलखिलाती आवाज ने ध्यान खींचा। मैंने देखा मेरे पड़ोसी आशा और मुकेश चाय का प्याला हाथ में लिए किसी बात पर जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। दोनों को इस तरह खुश देखकर मैं भी दूर से उनकी खुशी में खुद ब खुद शरीक हो गई। मैं अंदर आ गई, लेकिन मन बालकनी में ही रह गया था, क्योंकि इन दोनों की यह हंसी बहुत अरसे बाद सुनने को मिली थी। सभी कामों को अंजाम देने के बाद एक कड़क चाय के साथ बाहर की धूप और आशा मुकेश की फिल्म नुमा जिंदगी के फ्लैशबैक में फिर से मैं वापस जाने का मौका मिला। अरे आशा, क्या हुआ? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? मैंने उसके सामने पड़ने पर पूछा। वह कहीं से लौट रही थी और मैं शाम को सामने वाले पार्क में जाने के लिए निकल रही थी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, कहकर आशा अनमनी सी फीकी सी मुस्कान के साथ घर की ओर चली गई। खैर, बात आई गई होगी, लेकिन उनके घर से वाद विवाद की आते आवाजें कुछ और ही हालात में आ करती थी। चूंकि दोनों ही अभी कम उम्र के थे और वो एक प्यारे से बेटे के प्यारे माता पिता भी थे, धीरे धीरे आशा मुझसे खुलने लगी। दीदी देखो ना, मुकेश को क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर दूँ? चलो बताओ भी, क्या परेशानी है? क्यों तुम लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नजर नहीं आते हो? मैंने थोड़ा सख्ती दिखाई। मुकेश इतनी अच्छी जॉब में है, प्यारा सा बेटा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आशा? मैंने जोर देकर कहा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, मैं बस हाउसवाइफ बनकर ही रह गई, आशा तमतमाते हुए बोले जा रही थी। तो तुम नौकरी करना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ दीदी, मैंने भी मुकेश के बराबर पढ़ाई की है और मैं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मेरी भी तो कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, आशा कही जा रही थी। पता है मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मैं भी सोचती रहती थी कि आपका कोई परिवार नहीं दिखता, कोई आता जाता भी नज़र नहीं आता। आशा का मूड परिवर्तन होने लगा, अब उसकी सुई मेरी तरफ घूम चुकी थी। तो सुनो, और इससे सबक भी ले सकती हो, मेरी और आनंद की शादी को एक महीना बीत चुका था और हम बहुत खुश थे। मैं भी सेल्फ डिपेंड थी, मतलब अलग पहचान वाली शख्सियत। अब दोनों ही अपने अपने काम पर जाने लगे और शाम को थके आ जाते तो कौन किसका स्वागत करे, कौन किसको एक गिलास पानी दे और कौन किसे मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चाय पिलाए। यही सब शुरू होने लगा। आनंद बड़े सरल, शुभ और संतोषी प्रकृति के इंसान थे। वे डायरेक्ट तो नहीं, पर घुमा फिरा कर कहते रहते थे, तुम तो घर पर आराम से रानी बन कर रहो, या मुझे घर आने पर तुम्हारी मुस्कान और एक कप चाय ही बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे लगता था यह तो मुझे हाउस वाइफ बनाने के चक्कर में ही रहते हैं, पर मैं अनसुनी कर देती और आनंद को बैकवर्ड समझती। लेकिन कुछ तो मिस हो रहा था हमारे बीच, जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ को मेरी सेल्फ डिपेंडेंट का भूत पहले ही पता था। देख बेटा, अभी भी संभल जा। अरे पति पत्नी का मतलब ही होता है एक होना, और पुरुष का काम है बाहर काम करना और हमारा काम है जो वो कमा कर लाए उसे संजो कर रखना। जब वो अपना काम कर रहा है तो तुझे दिक्कत भी नहीं होने देता, तो तू अपने काम से क्यों कतरा रही है? माँ ने डांटते हुए कहा। अगर मैं भी नौकरी पर चली जाती हूँ तो मुझे इतने प्यार दुलार से कौन पालता? आया, माँ बोली जा रही थी, और तुझे तो अभी बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा फिगर और तेरी नौकरी बिगड़ सकती है। तो तू बता बता, क्या है तेरे पास जिससे आनंद तेरे पास खींचा चलाए? मैं प्रमोशन पर प्रमोशन पाती गई, आनंद दबी जुबान से बच्चे के लिए कहते रहे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती गई और हमारे बीच से प्रेम, स्नेह, आदर, प्यार, दुलार, हंसी खुशी कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन डॉक्टर ने भी कह दिया कि मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, माँ बनना थोड़ा मुश्किल है, और मैं माँ बनने से भी वंचित रह गई। इधर धीरे धीरे आनंद की तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगी। कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद उन्हें घर पर ही ले आए थे, फिर वही मेरा ऑफिस का काम, इसलिए एक नर्स सुनीता की व्यवस्था की गई। जो दिन भर उनकी बड़ी ही सेवा भाव से देखभाल करती। धीरे धीरे आनंद में सुधार आने लगा। अब वो बहुत खुश और स्वस्थ रहने लगे। विभा, तुमसे कुछ कहना है। अब मैंने सुनीता जी के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है। पागल हो गए हो क्या? मैं हड़बड़ा गई। एक दो टके की नर्स तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तमतमा उठी। वह दो टके की नर्स नहीं, एक स्त्री भी है। उसको दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, संवेदनाएं भी हैं। आनंद कहे जा रहे थे, तुम्हें नौकरी वाली बीबी नहीं चाहिए ना, तो यह भी तो नौकरी ही कर रही है। मैं चीखे जा रही थी। सुनीता जी मजबूरी में नौकरी कर रही है और यह मेरे लिए, बल्कि एक प्रेमपूर्ण परिवार बनाने के लिए इस नौकरी को रिजेक्ट भी कर चुकी है। मैंने तुम्हें एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद कभी कुछ कमी रह गई होगी। खैर, अब तुम आजाद हो और सेल्फ डिपेंड भी हो, कहकर आनंद जा चुके थे। मैं ठगी की ठगी खड़ी रह गई। तब से आज तक मैं अकेली ठूठ की तरह जीवन निकाल रही हूँ। हाँ, पर सेल्फ डिपेंड जरूर हूँ। अब समझ पाई कि स्त्री से जीवन, स्व से जीवन नहीं चलता, सर्व से जीवन चलता है। आनंद हमेशा कहते थे, और स्त्री तो एक कदम आगे है। हमें स्त्रीत्व से भागना नहीं, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। आंखें बह रही थी। अरे दीदी, प्लीज रो मत, आशा की आवाज मुझे वापस दे। तुम सोच लो, समझ लो और मुझे देख लो, फिर निर्णय लो। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर हमारे मूल गुणों और कार्यों की अवहेलना करना कहाँ तक उचित है? विचार करके देखना आशा। हर पुरुष दबाने के लिए हाउसवाइफ नहीं बनाता, बल्कि कुछ सच में रानी बनाने के लिए हाउसवाइफ बनाते हैं। मुन्ना रोने लगा। आशा ना जाने किन ख्यालों में गुम होकर घर को चल दी। और आज करीब एक सप्ताह बाद मैंने उनके घर में हंसने की आवाजें, मुकेश के आने पर पकौड़े की खुशबू ने सारा हाल बयां कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। की कहानी है सेल्फ डिपेंड, जिसे लिखा है मधु रंजन ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। सेल्फ डिपेंड। जैसे ही सुबह नहाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने बालकनी में गई, तो जल चढ़ाते चढ़ाते सामने से खिलखिलाती आवाज ने ध्यान खींचा। मैंने देखा मेरे पड़ोसी आशा और मुकेश चाय का प्याला हाथ में लिए किसी बात पर जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। दोनों को इस तरह खुश देखकर मैं भी दूर से उनकी खुशी में खुद ब खुद शरीक हो गई। मैं अंदर आ गई, लेकिन मन बालकनी में ही रह गया था, क्योंकि इन दोनों की यह हंसी बहुत अरसे बाद सुनने को मिली थी। सभी कामों को अंजाम देने के बाद एक कड़क चाय के साथ बाहर की धूप और आशा मुकेश की फिल्म नुमा जिंदगी के फ्लैशबैक में फिर से मैं वापस जाने का मौका मिला। अरे आशा, क्या हुआ? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? मैंने उसके सामने पड़ने पर पूछा। वह कहीं से लौट रही थी और मैं शाम को सामने वाले पार्क में जाने के लिए निकल रही थी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, कहकर आशा अनमनी सी फीकी सी मुस्कान के साथ घर की ओर चली गई। खैर, बात आई गई होगी, लेकिन उनके घर से वाद विवाद के आते आवाजें कुछ और ही हालात में आ करती थी। चूंकि दोनों ही अभी कम उम्र के थे और वो एक प्यारे से बेटे के प्यारे माता पिता भी थे। धीरे धीरे आशा मुझसे खुलने लगी। दीदी देखो ना, मुकेश को क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर दूँ? चलो बताओ भी, क्या परेशानी है? क्यों तुम लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नजर नहीं आते हो? मैंने थोड़ा सख्ती दिखाई। मुकेश इतनी अच्छी जॉब में है, प्यारा सा बेटा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आशा? मैंने जोर देकर कहा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, मैं बस हाउसवाइफ बनकर ही रह गई, आशा तमतमाते हुए बोली जा रही थी। तो तुम नौकरी करना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ दीदी, मैंने भी मुकेश के बराबर पढ़ाई की है और मैं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मेरी भी तो कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, आशा कही जा रही थी। पता है मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मैं भी सोचती रहती थी कि आपका कोई परिवार नहीं दिखता, कोई आता जाता भी नज़र नहीं आता। आशा का मूड परिवर्तन होने लगा। अब उसकी सुई मेरी तरफ घूम चुकी थी। तो सुनो, और इससे सबक भी ले सकती हो। मेरी और आनंद की शादी को 1 महीना बीत चुका था और हम बहुत खुश थे। मैं भी सेल्फ डिपेंड थी, मतलब अलग पहचान वाली शख्सियत। अब दोनों ही अपने अपने काम पर जाने लगे और शाम को थके आ जाते तो कौन किसका स्वागत करे, कौन किसको एक गिलास पानी दे और कौन किसे मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चाय पिलाए। यही सब शुरू होने लगा। आनंद बड़े सरल, शुभ और संतोषी प्रकृति के इंसान थे। वे डायरेक्ट तो नहीं पर घुमा फिरा कर कहते रहते थे, तुम तो घर पर आराम से रानी बन कर रहो, या मुझे घर आने पर तुम्हारी मुस्कान और एक कप चाय ही बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे लगता था यह तो मुझे हाउस वाइफ बनाने के चक्कर में ही रहते हैं, पर मैं अनसुनी कर देती और आनंद को बैकवर्ड समझती। लेकिन कुछ तो मिस हो रहा था हमारे बीच, जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ को मेरी सेल्फ डिपेंडेंट का भूत पहले ही पता था। देख बेटा, अभी भी संभल जा। अरे, पति पत्नी का मतलब ही होता है एक होना, और पुरुष का काम है बाहर काम करना और हमारा काम है जो वह कमा कर लाए उसे संजो कर रखना। जब वो अपना काम कर रहा है तो तुझे दिक्कत भी नहीं होने देता तो तू अपने काम से क्यों कतरा रही है, माँ ने डांटते हुए कहा। अगर मैं भी नौकरी पर चली जाती हूँ तो मुझे इतने प्यार दुलार से कौन पालता, आया, माँ बोली जा रही थी। और तुझे तो अभी बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा फिगर और तेरी नौकरी बिगड़ सकती है। तो तू बता बता क्या है तेरे पास जिससे आनंद तेरे पास खींचा चलाए। मैं प्रमोशन पर प्रमोशन पाती गई, आनंद दबी जुबान से बच्चे के लिए कहते रहे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती गई और हमारे बीच से प्रेम, स्नेह, आदर, प्यार, दुलार, हंसी खुशी कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन डॉक्टर ने भी कह दिया कि मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, माँ बनना थोड़ा मुश्किल है, और मैं माँ बनने से भी वंचित रह गई। इधर धीरे धीरे आनंद की तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगी। कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद उन्हें घर पर ही ले आए थे। फिर वही मेरा ऑफिस का काम, इसलिए एक नर्स सुनीता की व्यवस्था की गई जो दिन भर उनकी बड़ी ही सेवा भाव से देखभाल करती। धीरे धीरे आनंद में सुधार आने लगा। अब वो बहुत खुश और स्वस्थ रहने लगे। विभा, तुमसे कुछ कहना है। अब मैंने सुनीता जी के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है। पागल हो गए हो क्या, मैं हड़बड़ा गई। 1-2 टके की नर्स तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती, मैं तमतमा उठी। वह 2 टके की नर्स नहीं, एक स्त्री भी है, उसको दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, संवेदनाएं भी हैं, आनंद कहे जा रहे थे। तुम्हें नौकरी वाली बीवी नहीं चाहिए ना, तो यह भी तो नौकरी ही कर रही है, मैं चीखे जा रही थी। सुनीता जी मजबूरी में नौकरी कर रही है और यह मेरे लिए, बल्कि एक प्रेमपूर्ण परिवार बनाने के लिए इस नौकरी को रिजाइन भी कर चुकी हैं। मैंने तुम्हें एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद कभी कुछ कमी रह गई होगी। खैर, अब तुम आजाद हो और सेल्फ डिपेंड भी हो, कहकर आनंद जा चुके थे। मैं ठगी की ठगी खड़ी रह गई। तब से आज तक मैं अकेली ठूट की तरह जीवन निकाल रही हूँ, हाँ, पर सेल्फ डिपेंड जरूर हूँ। अब समझ पाई कि स्त्री से जीवन, स्व से जीवन नहीं चलता, सर्व से जीवन चलता है, आनंद हमेशा कहते थे। और स्त्री तो एक कदम आगे है, हमें स्त्रीत्व से भागना नहीं, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। आंखें बह रही थी। अरे दीदी, प्लीज रो मत, आशा की आवाज़ मुझे वापस दे। तुम सोच लो, समझ लो और मुझे देख लो, फिर निर्णय लो। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर हमारे मूल गुणों और कार्यों की अवहेलना करना कहाँ तक उचित है, विचार करके देखना। आशा, हर पुरुष दबाने के लिए हाउसवाइफ नहीं बनाता, बल्कि कुछ सच में रानी बनाने के लिए हाउसवाइफ बनाते हैं। मुन्ना रोने लगा। आशा ना जाने किन ख्यालों में गुम होकर घर को चल दी। और आज करीब 1 सप्ताह बाद मैंने उनके घर में हंसने की आवाज़ें, मुकेश के आने पर पकौड़े की खुशबू ने सारा हाल बयां कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सेल्फ डिपेंड, जिसे लिखा है मधु रंजन ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। सेल्फ डिपेंड। जैसे ही सुबह नहाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने बालकनी में गई, तो जल चढ़ाते चढ़ाते सामने से खिलखिलाती आवाज ने ध्यान खींचा। मैंने देखा मेरे पड़ोसी आशा और मुकेश चाय का प्याला हाथ में लिए किसी बात पर जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। दोनों को इस तरह खुश देखकर मैं भी दूर से उनकी खुशी में खुद ब खुद शरीक हो गई। मैं अंदर आ गई, लेकिन मन बालकनी में ही रह गया था, क्योंकि इन दोनों की यह हंसी बहुत अरसे बाद सुनने को मिली थी। सभी कामों को अंजाम देने के बाद एक कड़क चाय के साथ बाहर की धूप और आशा मुकेश की फिल्म नुमा जिंदगी के फ्लैशबैक में फिर से मैं वापस जाने का मौका मिला। अरे आशा, क्या हुआ? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? मैंने उसके सामने पड़ने पर पूछा। वह कहीं से लौट रही थी और मैं शाम को सामने वाले पार्क में जाने के लिए निकल रही थी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, कहकर आशा अनमनी से फीकी सी मुस्कान के साथ घर की ओर चली गई। खैर, बात आई गई होगी, लेकिन उनके घर से वाद विवाद की आते आवाजें कुछ और ही हालात में आ करती थी। चूंकि दोनों ही अभी कम उम्र के थे और एक प्यारे से बेटे के प्यारे माता पिता भी थे, धीरे धीरे आशा मुझसे खुलने लगी। दीदी देखो ना मुकेश को, क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर दूँ? चलो बताओ भी क्या परेशानी है, क्यों तुम लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नजर नहीं आते हो? मैंने थोड़ा सख्ती दिखाई। मुकेश इतनी अच्छी जॉब में है, प्यारा सा बेटा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आशा? मैंने जोर देकर कहा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, मैं बस हाउस वाइफ बनकर ही रह गई, आशा तमतमाते हुए बोली जा रही थी। तो तुम नौकरी करना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ दीदी, मैंने भी मुकेश के बराबर पढ़ाई की है और मैं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मेरी भी तो कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, आशा कही जा रही थी। पता है मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मैं भी सोचती रहती थी कि आपका कोई परिवार नहीं दिखता, कोई आता जाता भी नजर नहीं आता। आशा का मूड परिवर्तन होने लगा, अब उसकी सुई मेरी तरफ घूम चुकी थी। तो सुनो, और इससे सबक भी ले सकती हो, मेरी और आनंद की शादी को एक महीना बीत चुका था और हम बहुत खुश थे। मैं भी सेल्फ डिपेंड थी, मतलब अलग पहचान वाली शख्सियत। अब दोनों ही अपने अपने काम पर जाने लगे और शाम को थके आ जाते तो कौन किसका स्वागत करे, कौन किसको एक गिलास पानी दे और कौन किसे मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चाय पिलाए। यही सब शुरू होने लगा। आनंद बड़े सरल, शुभ और संतोषी प्रकृति के इंसान थे। वे डायरेक्ट तो नहीं, पर घुमा फिरा कर कहते रहते थे, तुम तो घर पर आराम से रानी बन कर रहो, या मुझे घर आने पर तुम्हारी मुस्कान और एक कप चाय ही बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे लगता था यह तो मुझे हाउस वाइफ बनाने के चक्कर में ही रहते हैं, पर मैं अनसुनी कर देती और आनंद को बैकवर्ड समझती। लेकिन कुछ तो मिस हो रहा था हमारे बीच, जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ को मेरी सेल्फ डिपेंडेंट का भूत पहले ही पता था। देख बेटा, अभी भी संभल जा। अरे पति पत्नी का मतलब ही होता है एक होना, और पुरुष का काम है बाहर काम करना और हमारा काम है जो वह कमा कर लाए उसे संजो कर रखना। जब वो अपना काम कर रहा है तो तुझे दिक्कत भी नहीं होने देता, तो तू अपने काम से क्यों कतरा रही है? माँ ने डांटते हुए कहा। अगर मैं भी नौकरी पर चली जाती हूँ तो मुझे इतने प्यार दुलार से कौन पालता? आया, माँ बोली जा रही थी, और तुझे तो अभी बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा फिगर और तेरी नौकरी बिगड़ सकती है। तो तू बता बता क्या है तेरे पास जिससे आनंद तेरे पास खींचा चलाए? मैं प्रमोशन पर प्रमोशन पाती गई, आनंद दबी जुबान से बच्चे के लिए कहते रहे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती गई और हमारे बीच से प्रेम, स्नेह, आदर, प्यार, दुलार, हंसी खुशी कब गायब हो भी मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन डॉक्टर ने भी कह दिया कि मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, माँ बनना थोड़ा मुश्किल है, और मैं माँ बनने से भी वंचित रह गई। इधर धीरे धीरे आनंद की तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगी। कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद उन्हें घर पर ही ले आए थे, फिर वही मेरा ऑफिस का काम, इसलिए एक नर्स सुनीता की व्यवस्था की गई। जो दिन भर उनकी बड़ी ही सेवा भाव से देखभाल करती। धीरे धीरे आनंद में सुधार आने लगा। अब वो बहुत खुश और स्वस्थ रहने लगे। विभा, तुमसे कुछ कहना है। अब मैंने सुनीता जी के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है। पागल हो गए हो क्या? मैं हड़बड़ा गई। एक दो टके की नर्स तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तमतमा उठी। वह दो टके की नर्स नहीं, एक स्त्री भी है। उसको दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, संवेदनाएं भी हैं। आनंद कहे जा रहे थे, तुम्हें नौकरी वाली बीबी नहीं चाहिए ना, तो यह भी तो नौकरी ही कर रही है। मैं चीखे जा रही थी। सुनीता जी मजबूरी में नौकरी कर रही है और यह मेरे लिए, बल्कि एक प्रेमपूर्ण परिवार बनाने के लिए इस नौकरी को रिजेक्ट भी कर चुकी है। मैंने तुम्हें एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद कभी कुछ कमी रह गई होगी। खैर, अब तुम आजाद हो और सेल्फ डिपेंड भी हो, कहकर आनंद जा चुके थे। मैं ठगी की ठगी खड़ी रह गई और तब से आज तक मैं अकेली ठूठ की तरह जीवन निकाल रही हूँ। हाँ, पर सेल्फ डिपेंड जरूर हूँ। अब समझ पाई कि स्त्री से जीवन, स्व से जीवन नहीं चलता, सर्व से जीवन चलता है, आनंद हमेशा कहते थे। और स्त्री तो एक कदम आगे है, हमें स्त्रीत्व से भागना नहीं, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। आंखें बह रही थी। अरे दीदी, प्लीज रो मत, आशा की आवाज़ मुझे वापस दे। तुम सोच लो, समझ लो और मुझे देख लो, फिर निर्णय लो। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर हमारे मूल गुणों और कार्यों की अवहेलना करना कहाँ तक उचित है? विचार करके देखना आशा, हर पुरुष दबाने के लिए हाउसवाइफ नहीं बनाता, बल्कि कुछ सच में रानी बनाने के लिए हाउसवाइफ बनाते हैं। मुन्ना रोने लगा। आशा ना जाने किन ख्यालों में गुम होकर घर को चल दी। और आज करीब एक सप्ताह बाद मैंने उनके घर में हंसने की आवाज़ें, मुकेश के आने पर पकौड़े की खुशबू ने सारा हाल बयां कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सेल्फ डिपेंड, जिसे लिखा है मधु रंजन ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। सेल्फ डिपेंड। जैसे ही सुबह नहाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने बालकनी में गई, तो जल चढ़ाते चढ़ाते सामने से खिलखिलाती आवाज ने ध्यान खींचा। मैंने देखा मेरे पड़ोसी आशा और मुकेश चाय का प्याला हाथ में लिए किसी बात पर जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। दोनों को इस तरह खुश देखकर मैं भी दूर से उनकी खुशी में खुद ब खुद शरीक हो गई। मैं अंदर आ गई, लेकिन मन बालकनी में ही रह गया था, क्योंकि इन दोनों की यह हंसी बहुत अरसे बाद सुनने को मिली थी। सभी कामों को अंजाम देने के बाद एक कड़क चाय के साथ बाहर की धूप और आशा मुकेश की फिल्म नुमा जिंदगी के फ्लैशबैक में फिर से मैं वापस जाने का मौका मिला। अरे आशा, क्या हुआ? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? मैंने उसके सामने पड़ने पर पूछा। वह कहीं से लौट रही थी और मैं शाम को सामने वाले पार्क में जाने के लिए निकल रही थी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, कहकर आशा अनमनी सी फीकी सी मुस्कान के साथ घर की ओर चली गई। खैर, बात आई गई होगी, लेकिन उनके घर से वाद विवाद की आते आवाजें कुछ और ही हालात में आ करती थी। चूंकि दोनों ही अभी कम उम्र के थे और वो एक प्यारे से बेटे के प्यारे माता पिता भी थे। धीरे धीरे आशा मुझसे खुलने लगी। दीदी देखो ना मुकेश को, क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर दूँ? चलो बताओ भी, क्या परेशानी है? क्यों तुम लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नजर नहीं आते हो? मैंने थोड़ा सख्ती दिखाई। मुकेश इतनी अच्छी जॉब में है, प्यारा सा बेटा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आशा? मैंने जोर देकर कहा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, मैं बस हाउसवाइफ बनकर ही रह गई, आशा तमतमाते हुए बोले जा रही थी। तो तुम नौकरी करना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ दीदी, मैंने भी मुकेश के बराबर पढ़ाई की है और मैं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मेरी भी तो कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, आशा कही जा रही थी। पता है मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मैं भी सोचती रहती थी कि आपका कोई परिवार नहीं दिखता, कोई आता जाता भी नज़र नहीं आता। आशा का मूड परिवर्तन होने लगा। अब उसकी सुई मेरी तरफ घूम चुकी थी। तो सुनो, और इससे सबक भी ले सकती हो। मेरी और आनंद की शादी को 1 महीना बीत चुका था और हम बहुत खुश थे। मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट थी, मतलब अलग पहचान वाली शख्सियत। अब दोनों ही अपने अपने काम पर जाने लगे और शाम को थके आ जाते तो कौन किसका स्वागत करे, कौन किसको एक गिलास पानी दे और कौन किसे मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चाय पिलाए। यही सब शुरू होने लगा। आनंद बड़े ही सरल, शुभ और संतोषी प्रकृति के इंसान थे। वे डायरेक्ट तो नहीं पर घुमा फिरा कर कहते रहते थे, तुम तो घर पर आराम से रानी बन कर रहो, या मुझे घर आने पर तुम्हारी मुस्कान और एक कप चाय ही बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे लगता था यह तो मुझे हाउस वाइफ बनाने के चक्कर में ही रहते हैं, पर मैं अनसुनी कर देती और आनंद को बैकवर्ड समझती। लेकिन कुछ तो मिस हो रहा था हमारे बीच, जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ को मेरी सेल्फ डिपेंडेंट का भूत पहले ही पता था। देख बेटा, अभी भी संभल जा। अरे, पति पत्नी का मतलब ही होता है एक होना, और पुरुष का काम है बाहर काम करना और हमारा काम है जो वह कमा कर लाए उसे संजो कर रखना। जब वो अपना काम कर रहा है तो तुझे दिक्कत भी नहीं होने देता, तो तू अपने काम से क्यों कतरा रही है, माँ ने डांटते हुए कहा। अगर मैं भी नौकरी पर चली जाती हूँ तो मुझे इतने प्यार दुलार से कौन पालता, आया, माँ बोली जा रही थी। और तुझे तो अभी बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा फिगर और तेरी नौकरी बिगड़ सकती है। तो तू बता बता क्या है तेरे पास जिससे आनंद तेरे पास खींचा चलाए। मैं प्रमोशन पर प्रमोशन पाती गई, आनंद दबी जुबान से बच्चे के लिए कहते रहे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती गई और हमारे बीच से प्रेम, स्नेह, आदर, प्यार, दुलार, हंसी खुशी कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन डॉक्टर ने भी कह दिया कि मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, माँ बनना थोड़ा मुश्किल है, और मैं माँ बनने से भी वंचित रह गई। इधर धीरे धीरे आनंद की तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगी। कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद उन्हें घर पर ही ले आए थे। फिर वही मेरा ऑफिस का काम, इसलिए एक नर्स सुनीता की व्यवस्था की गई जो दिन भर उनकी बड़ी ही सेवा भाव से देखभाल करती। धीरे धीरे आनंद में सुधार आने लगा। अब वो बहुत खुश और स्वस्थ रहने लगे। विभा, तुमसे कुछ कहना है। अब मैंने सुनीता जी के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है। पागल हो गए हो क्या, मैं हड़बड़ा गई। 1-2 टके की नर्स तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती, मैं तमतमा उठी। वह 2 टके की नर्स नहीं, एक स्त्री भी है, उसको दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, संवेदनाएं भी हैं, आनंद कहे जा रहे थे। तुम्हें नौकरी वाली बीबी नहीं चाहिए ना, तो यह भी तो नौकरी ही कर रही है, मैं चीखे जा रही थी। सुनीता जी मजबूरी में नौकरी कर रही है और यह मेरे लिए, बल्कि एक प्रेमपूर्ण परिवार बनाने के लिए इस नौकरी को रिजाइन भी कर चुकी हैं। मैंने तुम्हें एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद कभी कुछ कमी रह गई होगी। खैर, अब तुम आजाद हो और सेल्फ डिपेंड भी हो, कहकर आनंद जा चुके थे। मैं ठगी की ठगी खड़ी रह गई। तब से आज तक मैं अकेली ठूठ की तरह जीवन निकाल रही हूँ, हाँ, पर सेल्फ डिपेंड जरूर हूँ। अब समझ पाई कि स्त्री से जीवन, स्व से जीवन नहीं चलता, सर्व से जीवन चलता है, आनंद हमेशा कहते थे। और स्त्री तो एक कदम आगे है, हमें स्त्रीत्व से भागना नहीं, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। आंखें बह रही थी। अरे दीदी, प्लीज रो मत, आशा की आवाज़ मुझे वापस ले आई। तुम सोच लो, समझ लो और मुझे देख लो, फिर निर्णय लो। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर हमारे मूल गुणों और कार्यों की अवहेलना करना कहाँ तक उचित है, विचार करके देखना। आशा, हर पुरुष दबाने के लिए हाउसवाइफ नहीं बनाता, बल्कि कुछ सच में रानी बनाने के लिए हाउसवाइफ बनाते हैं। मुन्ना रोने लगा। आशा ना जाने किन ख्यालों में गुम होकर घर को चल दी। और आज करीब 1 सप्ताह बाद मैंने उनके घर में हंसने की आवाज़ें, मुकेश के आने पर पकौड़े की खुशबू ने सारा हाल बयां कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सेल्फ डिपेंड, जिसे लिखा है मधु रंजन ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। सेल्फ डिपेंड। जैसे ही सुबह नहाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने बालकनी में गई, तो जल चढ़ाते चढ़ाते सामने से खिलखिलाती आवाज ने ध्यान खींचा। मैंने देखा मेरे पड़ोसी आशा और मुकेश चाय का प्याला हाथ में लिए किसी बात पर जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। दोनों को इस तरह खुश देखकर मैं भी दूर से उनकी खुशी में खुद ब खुद शरीक हो गई। मैं अंदर आ गई, लेकिन मन बालकनी में ही रह गया था, क्योंकि इन दोनों की यह हंसी बहुत अरसे बाद सुनने को मिली थी। सभी कामों को अंजाम देने के बाद एक कड़क चाय के साथ बाहर की धूप और आशा मुकेश की फिल्म नुमा जिंदगी के फ्लैशबैक में फिर से मैं वापस जाने का मौका मिला। अरे आशा, क्या हुआ? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? मैंने उसके सामने पड़ने पर पूछा। वह कहीं से लौट रही थी और मैं शाम को सामने वाले पार्क में जाने के लिए निकल रही थी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, कहकर आशा अनमनी से फीकी सी मुस्कान के साथ घर की ओर चली गई। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन उनके घर से वाद विवाद की आते आवाज़ें कुछ और ही हालात में आ करती थी। चूँकि दोनों ही अभी कम उम्र के थे और वो एक प्यारे से बेटे के प्यारे माता पिता भी थे। धीरे धीरे आशा मुझसे खुलने लगी। दीदी देखो ना, मुकेश को क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर दूँ? चलो बताओ भी, क्या परेशानी है? क्यों तुम लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नज़र नहीं आते हो? मैंने थोड़ा सख्ती दिखाई। मुकेश इतनी अच्छी जॉब में है, प्यारा सा बेटा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आशा? मैंने जोर देकर कहा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, मैं बस हाउसवाइफ बनकर ही रह गई, आशा तमतमाते हुए बोली जा रही थी। तो तुम नौकरी करना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ दीदी, मैंने भी मुकेश के बराबर पढ़ाई की है और मैं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मेरी भी तो कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, आशा कही जा रही थी। पता है मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मैं भी सोचती रहती थी कि आपका कोई परिवार नहीं दिखता, कोई आता जाता भी नज़र नहीं आता। आशा का मूड परिवर्तन होने लगा, अब उसकी सुई मेरी तरफ घूम चुकी थी। तो सुनो, और इससे सबक भी ले सकती हो, मेरी और आनंद की शादी को एक महीना बीत चुका था और हम बहुत खुश थे। मैं भी सेल्फ डिपेंड थी, मतलब अलग पहचान वाली शख्सियत। अब दोनों ही अपने अपने काम पर जाने लगे और शाम को थके आ जाते तो कौन किसका स्वागत करे, कौन किसको एक गिलास पानी दे और कौन किसे मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चाय पिलाए। यही सब शुरू होने लगा। आनंद बड़े ही सरल, शुभ और संतोषी प्रकृति के इंसान थे। वे डायरेक्ट तो नहीं, पर घुमा फिरा कर कहते रहते थे, तुम तो घर पर आराम से रानी बन कर रहो, या मुझे घर आने पर तुम्हारी मुस्कान और एक कप चाय ही बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे लगता था यह तो मुझे हाउस वाइफ बनाने के चक्कर में ही रहते हैं और मैं अनसुनी कर देती और आनंद को बैकवर्ड समझती। लेकिन कुछ तो मिस हो रहा था हमारे बीच, जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ को मेरी सेल्फ डिपेंडेंट का भूत पहले ही पता था। देख बेटा, अभी भी संभल जा। अरे पति पत्नी का मतलब ही होता है एक होना, और पुरुष का काम है बाहर काम करना और हमारा काम है जो वह कमा कर लाए उसे संजो कर रखना। जब वो अपना काम कर रहा है तो और तुझे दिक्कत भी नहीं होने देता, तो तू अपने काम से क्यों कतरा रही है? माँ ने डांटते हुए कहा। अगर मैं भी नौकरी पर चली जाती हूँ तो मुझे इतने प्यार दुलार से कौन पालता? आया, माँ बोली जा रही थी, और तुझे तो अभी बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा फिगर और तेरी नौकरी बिगड़ सकती है। तो तू बता क्या है तेरे पास जिससे आनंद तेरे पास खींचा चलाए? मैं प्रमोशन पर प्रमोशन पाती गई, आनंद दबी जुबान से बच्चे के लिए कहते रहे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती गई और हमारे बीच से प्रेम स्नेह आदर प्यार दुलार हंसी खुशी कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन डॉक्टर ने भी कह दिया कि मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, माँ बनना थोड़ा मुश्किल है, और मैं माँ बनने से भी वंचित रह गई। इधर धीरे धीरे आनंद की तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगी। कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद उन्हें घर पर ही ले आए थे, फिर वही मेरा ऑफिस का काम, इसलिए एक नर्स सुनीता की व्यवस्था की गई। जो दिन भर उनकी बड़े ही सेवा भाव से देखभाल करती। धीरे धीरे आनंद में सुधार आने लगा। अब वो बहुत खुश और स्वस्थ रहने लगे। विभा, तुमसे कुछ कहना है। अब मैंने सुनीता जी के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है। पागल हो गए हो क्या? मैं हड़बड़ा गई। एक दो टके की नर्स तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तमतमा उठी। वह दो टके की नर्स नहीं, एक स्त्री भी है। उसको दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, संवेदनाएं भी हैं। आनंद कहे जा रहे थे, तुम्हें नौकरी वाली बीबी नहीं चाहिए ना, तो यह भी तो नौकरी ही कर रही है। मैं चीखे जा रही थी। सुनीता जी मजबूरी में नौकरी कर रही है और यह मेरे लिए, बल्कि एक प्रेमपूर्ण परिवार बनाने के लिए इस नौकरी को रिजाइन भी कर चुकी हैं। मैंने तुम्हें एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद कभी कुछ कमी रह गई होगी। खैर, अब तुम आज़ाद हो और सेल्फ डिपेंड भी हो, कहकर आनंद जा चुके थे। मैं ठगी की ठगी खड़ी रह गई और तब से आज तक मैं अकेली ठूठ की तरह जीवन निकाल रही हूँ। हाँ, पर सेल्फ डिपेंड जरूर हूँ। अब समझ पाई कि स्त्री से जीवन, स्व से जीवन नहीं चलता, सर्व से जीवन चलता है, आनंद हमेशा कहते थे। और स्त्री तो एक कदम आगे है, हमें स्त्रीत्व से भागना नहीं, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। आंखें बह रही थी। अरे दीदी, प्लीज रो मत, आशा की आवाज़ मुझे वापस ले आई। तुम सोच लो, समझ लो और मुझे देख लो, फिर निर्णय लो। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर हमारे मूल गुणों और कार्यों की अवहेलना करना कहाँ तक उचित है? विचार करके देखना आशा, हर पुरुष दबाने के लिए हाउसवाइफ नहीं बनाता, बल्कि कुछ सच में रानी बनाने के लिए हाउसवाइफ बनाते हैं। मुन्ना रोने लगा। आशा ना जाने किन ख्यालों में गुम होकर घर को चल दी। और आज करीब एक सप्ताह बाद मैंने उनके घर में हंसने की आवाज़ें, मुकेश के आने पर पकोड़े की खुशबू ने सारा हाल बयां कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।